सकते हैं। और दूसरी बात है ये कि कभी नारद जी को इच्छा हुई कृष्ण की करुणा देखने की, और वो कृष्ण की करुणा देखने के लिए द्वारका में गए, और उसी समय में रोहिणी जी और 16,000 महिषियां एक जगह भीतर अंदर महल में बैठी थी और चर्चा चल रही थी। मैया हम एक एक से सुंदरी हैं, एक एक से किशोरी और सब गुणों में संपन्न हैं, सभी साधारण नहीं है, राजा की लड़कियां हैं, और ऐसे तैसे किसी जगह से बढ़ा करके हम लोगों को नहीं लेकर के आए। सप्तभामा जी हैं, यामोंती जी हैं, यामोंती जी के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, उनसे युद्ध करना पड़ा, और यामोंती जी भी साधारण नहीं है। ऐसे ऐसे एक एक से गुणी कृष्ण की पटरानी है, ये साधारण नहीं। तो हम लोग ऐसी असाधारण सुंदरी गुणवती रूपवती, और हम लोगों को तनिक भी चिंता नहीं करते, गांव में ब्रज में रहने वाली वनों में बिछरने वाली गोपियों के लिए कलकने रोते हैं, कलपते हैं, गायों के लिए रोते हैं, बछड़ों के लिए रोते हैं, वहां के गोवर्धन के पर्वत के लिए रोते हैं, और हम लोगों का नाम जब देखो तो रोते हुए और उन्हीं का नाम लेते हैं। क्यों, हम लोगों में क्या कमी है और उन लोगों में क्या विशेषता है, ये ऐसा है। वही प्रश्न के संबंध में बतला रही थी, एकदम अपने आप वो रोते रोने लगे, और जितनी रानियां थी कृष्ण की उस समय महिमा और उनका रूप देख करके और ब्रजवासियों का चरित्र सुन करके सभी मुक्त हो गए। जहाँ पर कृष्ण की कथा होती है वहीं पर कृष्ण रहते हैं, और कहीं नहीं रहते, बैकुंठ इत्यादि में नहीं रहते, ना हम बरना में बैठे, इसलिए उनकी कथा बढ़ा रही है तो वहां कैसे रह सकते हैं। और इतनी रसमयी प्रेममयी कथा हो गई थी, बस कृष्ण और राज दरबार में नहीं रहते, धर्मा सभा में बल वो आगे तो बल्दे भी उनके पीछे पीछे चले आए। नारद जी देख रहे हैं, जबकि वह घर में घुसने लगे जहाँ हरि कथा हो रही है, सुभद्रा जी गेट पर खड़ी हैं, पहरा लगा दिया है रोहिणी मैया ने, उन्हें पढ़ाना किसी को माता ने जाने, कृष्ण बलदेव जी आए करो, उन्होंने वही पर रोक लिया, वहीं से सुनने लगे। ऐसी कथा को सुन करके प्रेम से द्रवित हो गए, द्रवित होने से हाथ पैर नीचे का ये भाग अब केवल इतना ही बाकी था, इतने में रोहिणी मैया ने कथा समाप्त की। रोहिणी जब समाप्त की तो धीरे 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 उनके अंग पतंग सब ठीक हुए। इतने में नारद जी बड़ी ग्लानि से वहां पर पहुंचे, प्रभु हमारे लिए ही इतना आपको कष्ट करना, प्रभु जो नहीं तुम्हारे वजह से मैं भक्तों के वशीभूत होकर के और हमारा इतना शरीर भी प्रेम से गल गया, इसने बहुत प्रसन्न हूं तू करना। उन्होंने बरमाना जी आपका यह करुणा से द्रवित हुआ, प्रेम से द्रवित हुआ भी संसार में प्रकाशित हो नित्य काल के लिए, और लोग आपकी महिमा को समझे, इसलिए वो जगन्नाथ बलदेव भद्रा तीनों ऐसे के ऐसे ही उसने पीछे से जगन्नाथ में जाकर के वही मूर्ति के रूप में प्रकाश।
जगन्नाथ सुभद्रा तीन जन रानीगंज का ना हो जाएगा उन्होंने सुन थी
भाई, जिसको प्रेम अधिक होता है उनके आंखों से ही हरि कथा सुन करके आंसू आता सबको नहीं आता,
सुभद्रा से रानीगंज का प्रेम कम है क्या?
हाँ हो सकता है, देखो वो ब्रज में नहीं गोपी होकर के आ जाती, बिना प्रेम के हृदय द्रवित नहीं होता, सभी श्रोता लोग सुनते हैं, और किसी का जिसका प्रेम निर्मल होता है उसी में प्रेम आ जाता है, सब में महाभाव क्यों नहीं हो जाता, जैसे राधिका जी नहीं होता है, सभी कृष्ण वही है और वही विदा हो रही है, सबके साथ निराश कर रहे हैं, होता क्यों नहीं, महाभावी सब लोगों में क्यों नहीं हो जाता, एक ही प्रकार की कथा सभी सुनते हैं, सबका अनुभव एक समान नहीं होता है, जिसका चित्त उन्नत होता है और हृदय निर्मल होता है उसमें भी भक्ति उसमें रहेगी, जितनी ही अधिक भक्ति होगी भगवान का नाम रूप गुण सुन करके उतना ही, महाप्रभु के जितने भक्त थे महाप्रभु जी के लीला चरित्रों को देख करके समझे कैसे भाव उनके हो जाते हैं। केवल प्रताप रूप राजा देख रहे हैं, अरे महाप्रभु यहाँ पर भी नाच रहे हैं, वहां पर भी नाच रहे हैं, वहां पर, और लाखों लोग वहां पर थे, किसी ने नहीं देखा, और एक किसी ने देखा, महाप्रभु ने कहा है कि तुम्हारा कितना सौभाग्य कि साधु हम भट्टाचार्य ने महाराज प्रताप सिंह, तुम्हारा कितना सौभाग्य, ये सभी यहाँ पर नहीं देखते, क्यों नहीं देखा, भक्ति के साथ। एक आदमी वही चैतन्य चैतन्य पढ़ रहे हैं, दूसरा भी पढ़ रहा है, हजारों आदमी पढ़ते हैं, और कोई पत्थर पर चमत्कृत होकर के आंखों से आंखों से एकदम दर्द हो रहा है, और किसी को नहीं, क्यों, भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा जितना हृदय जितना निर्मल उच्चा है, प्रेम वही को प्रकाशित होकर के उसको भाव से प्रवित कर। इसलिए कृष्ण और बलदेव ब्रज संबंधी है, कुछ कुछ इन भाइयों के साथ में कुछ कुछ सुभद्रा जी का, किंतु उन्हीं का ब्रज का भाव उनमें रानियों में नहीं है।
रोहिणी माता ब्रज की थी,
दो तो वर्णन कर रही है ना, वर्णन कर रही है, इसलिए उनका उपमान नहीं, या हो भी सकता है उनका, वो सब समय उसका अनुभूति करती है। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं, कभी कभी दोनों द्रवित हो जाते हैं, कभी सुखदेव गोस्वामी एकदम द्रवित हो जाते हैं, जिनको भक्ति है वो द्रवित। तो नारद जी ने कहा कि यही आपका रूप संसार में कहीं नित्य काल के लिए प्रकाशित रहे और सब लोग आपके इस भाव को देखें, वही वहां पर प्रकाशित हुए हैं, फल बल बल करके वहां पर। और कलयुग आया, अब तक तो ऐसे ही प्रतिवर्ष चल रहा था, राजा व्यवस्था करते थे, सब आते थे जाते थे, और नौकर जाकर मंदिर को साफ करते थे, और वही रथ को खींच करके ले जाते थे, खींच करके आते थे, हाथियों के द्वारा खींचा जाता था। इस प्रकार से लोग बड़े बड़े वैभव को देखने के लिए आए। जब चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लिए और दक्षिण देश में से घूम करके लौट करके आए, तो रथ यात्रा का और जगन्नाथ क्षेत्र का और जगन्नाथ जी का भाव ही एकदम बदल करके प्रेममय हो, अब तक ऐश्वर्यमय था, अब हो गया प्रेम की पराकाष्ठा हो गई। अरे जहां पर स्वरूप दामोदर राय रामानंद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बात संत चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त मुकुंद नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य ऐसे सब लोग भक्त हैं, वहां का वातावरण कैसा है, एक भक्त ही कैसा है किसी एक जगह का वातावरण कर देता है, और यहाँ पर ऐसे सब प्रेमी लोग एकत्रित हैं भाव भी देते हैं। और वही जो जगन्नाथ जी फूफे जगन्नाथ थे, फूफा जगन्नाथ थे, फूफा माने क्या, फूफा
आपसे पूरा पूरा जल्दी
पूरा पूरा नहीं, उनको फूफा करते हैं, कोई पेड़ का ऊपर का डाली काट लिए जाए ना और केवल नीचे का था उसको फूफा पेड़ कहते हैं, तो फूफा जगन्नाथ कहते हैं, उनको देख करके क्या भाव है, किंतु महाप्रभु जब गए तो उनको देखा क्या, जिस समय में विक्रम प्रस्तुत हुआ उस समय में महाराज ने इंद्रदुम ने उनसे कुछ कर मांगा, किससे, जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी प्रभु एक मैं बर चाहता हूं, आप मुझे प्रसन्न है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, तुम बर मांगो, प्रभु यह जो हमारी विग्रह प्रकाश हुआ और आपका जो योग हुआ और रथ यात्रा जो हम करेंगे, इसमें मैं चाहता हूं कि हमारी कोई संतान में ये संतान हो, निर्वंश हो जाए, निर्वंश माने कोई संतान ही हमारे वंश में हमको कोई सुख न हो। प्रभु जी बोले क्यों, तो इसलिए कि हमारा कोई वंश में लड़का होगा तो ये कहेगा ये मंदिर हमारे बाप का है, ये मेरा है, दखल देगा, उसको बेचेगा, सेवा करेगा ठीक से कि नहीं, इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि भक्तों के हाथ में सब समय इसका प्रबंध रहे और एक आदमी के हाथ में प्रबंध न रहे। आपके जो कि ये ठाकुर जी का मूर्ति बनाया, तो ये बनाया था, अब तो जान गए नहीं कौन बनाया था, तो कौन बनाया था, जगन्नाथ जी खुद बनाया था। इसलिए जिसने जिस कारीगर ने मूर्ति को बनाया आर्यन को, उन्हीं के वंश वाले वो आएंगे और वो आकर के इसका अर्चन करेंगे। अर्चन ना क्या करेंगे, सेवा करेंगे। और वृद्ध कारीगर जो था जो बनाया है, इसी के वंश वाले प्रति वर्ष आकर के ठाकुर जी के लिए रथ बनाया करें, क्योंकि उसने ठाकुर जी को बनाया था ना, तो इसलिए वो कारीगर रहेंगे। इसलिए उसी के ठाकुर जी मुझ पुराने लगे, देखो तो हमको ये में बांध लिए, तुम उसी के वंश के माने हमारे वंश के ही जैसे जैसे हमारे सब लोग आएंगे और उनका वंश चलेगा, और उस वंश के लोग आकर के प्रति वर्ष ये तीन रथ बनाएंगे उन्हीं के वंश, अभी तक भी उन्हीं के वंश के वो लोग बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा, ठाकुर जी ने स्वयं कहा कि जो विश्वावसु है उसके वंश के लोग, उसका वंश अंत तक चलेगा, और उस वंश में जो लोग होंगे उनका नाम होगा वैशा, वो शूद्र वंश के हैं, और वो लोगों का अधिकार रहेगा जब विशेष रूप में ये जो 10 दिन का समय होगा वो विशेष दिन के लिए से बात करेंगे, 10 या 15 दिन के लिए, वो अनवसर होता है इन दिनों के लिए, अनवसर माने क्या, ठाकुर जी स्नान करके बीमार पड़ जाते हैं,
अनवसर तो 15 दिन
है, वो 15 दिन और ये 15 और 10 25 दिन के, और सब समय भी उनकी और दूसरी दूसरी सभा में लगे, इनका नाम होगा द्वैता, द्वैता माने लोग प्रतिवर्ष ये सब रथ ठाकुर जी को रथ में चढ़ाना यही करते हैं, उतारने का काम यही सब करते हैं, भोग भी देते हैं, ये सब उनका काम। और उन्होंने कहा ये विद्यापति जो ब्राह्मण है जिसके परिश्रम से इन दिन में आप आए हैं और उसने मेरी सेवा की, इसके 2 पत्नियां हैं, एक सबर वाली शिक्षा वाली और एक पहले ब्राह्मण वाली, तो ब्राह्मण वाली पत्नी के जो वंश आएगा वो अर्चन करेगा जगन्नाथ का अर्चन, और दूसरी जो पत्नी सबर वाली है उसके वंश वाले रसोई बनाए, उनका रसोई वही बनाएंगे। अभी भी वैसे इसी प्रणाली के साथ में सब चल रहा है, कितने लाखों वर्ष हो गए और सब जगह में कितना परिवर्तन हो गया और सब मंदिरों में, किंतु यही जगन्नाथ जी का मंदिर है जो अभी तक ठीक उसी कायदा काम, कितने वंश मिट गए, कितने क्या हो गए, राजा लोग आए उसका, किंतु उनकी व्यवस्था ठीक इसी रूप में चल, यहाँ तक कि रामानुज ने इसमें कुछ हेर फेर करने की चेष्टा की, उनको रसोईया वालों को निकाल दिया, पुजारियों को निकाल दिया और दक्षिण से ब्राह्मण मंगाया, तो ठाकुर जी नाराज ने उनको उठा करके सोनाचल दिया, तो तुम इसमें दखल मत दो, पान खाते हैं तो क्या किया, ब्राह्मण उन लोगों ने कहा कि भाई हमको निकाल दिया, मैं प्राण छोड़ दूँ, कब मैं नहीं दे पाता, इस तरह से वो सेवा करते हैं। और ये कहा कि केवल दिन भर रात भर में 24 घंटे में केवल एक प्रहर माने 3 घंटा आपका दरवाजा खुला रहेगा, बंद रहेगा, और बाकी सब समय 21 घंटा खुला रहेगा, केवल 12 से लेकर के 3 बजे तक बस आपका बंद रहेगा दरवाजा रात में, और दिन भर रात भर खुला रहेगा, और एक बार ये आपका हाथ कभी भी नहीं सूखेगा, सब समय खाएंगे और हाथ धोएंगे, फिर खाएंगे
हाथ
धोने पर 55 बार खाएंगे,
हाथ धोने पहले फिर
हाथ पानी में धुलाया, हाथ में दिया, हाथ धो दिया, फिर थोड़ा सा कपड़े में पोछा, इतने में भोग आएगा, 56 बार खाएंगे, और कभी भी आप मत कहेंगे जब मेरा पेट भर गया और नहीं खा सकता, और कितना भूख लगता है चावल एक बार में कितना सैकड़ों मन लगता है, सैकड़ों। और वैसे ही सब्जी तरकारी पूरी पकवान कितने मिठाई कितना सब्जी और सब वहीं पर बन सके और इत्यादि के द्वारा बनता है। चावल और दाल स्पेशल होना, हम लोग तो पूरी जाते हैं केवल उसी के लोग, ठाकुर जी को तो दर्शन होता नहीं, किंतु याद रहते हैं ये कभी चावल और दाल का प्रसाद वहाँ पर खाए। मैं गया एक बार गए वहाँ तो हमारे साथ में काली में कौन था, लखन या कोई उस समय कौन था दो आदमी हम लोग यहाँ से गए, उस समय हम लोग का मठ पट नहीं था, वहाँ पर जा करके मंदिर में गए, कहा जी आज हम प्रसाद खरीदेंगे नहीं और देखे कि प्रसाद मिलता है कि नहीं, मनी मन संकल्प कर दिया और वहीं पर जा करके बाजार में इधर उधर देख रहे हैं। बहुत बार गए तो वो हम लोग घूमने लगे, एक आदमी आया तो हमने कुछ नहीं किया, तो हम बैठ गए पत्ता दे करके चावल और दाल। उन्होंने साल जी जीवन में हम उसको कभी भूल नहीं सकते, कभी भूल नहीं सकते। और सबसे इसी के लिए स्पेशल जब जाते हैं जरूर खरीद करके जैसे तैसे प्रसाद अंततः एक दिन तो जरूर लेते हैं, या इतना स्वादिष्ट हजारों लोग जाते हैं। और ऐसा कि यहाँ के 14 लोग हैं यहाँ पर प्रसाद कच्चा नहीं लेंगे, किंतु वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर दूसरा तो प्रसाद नहीं, वहाँ पर कच्चा प्रसाद मिलेगा वहाँ पर सब। और कहा है बाकी हो जूठा भी हो कुकुर के मुख से भी गिरा हुआ हो प्रसाद और यदि किसी ने उपेक्षा की उसका घोर नरक होगा, कोई भी हो। ऐसे आप लोग समझेंगे ठाकुर जी का प्रसाद कोई कच्चा भी हो चावल और ठाकुर जी को भोग लग गया, चाहे वो जगन्नाथ जी हो चाहे बंगाल हो चाहे यूपी हो चाहे जहां कहीं भी, जो प्रसाद ने लगा दिया वो भगवत स्वरूप हो गया। महाप्रसाद ने कच्चा पक्का मत देखना, नहीं तो भक्ति एक बार ही नष्ट हो जाएगी। कभी मत विचार करना पक्का वहां पर जो है और कच्चा जो है वही। कुछ अभी हम लोगों में मठों में भी ऐसे हैं, मठों में भी ऐसे हैं जो हरनाम दीक्षा लेने के बाद भी कुछ कुछ विचार करते हैं, किस विचार नहीं करते, कभी भावना और संकल्प भी नहीं आया, नहीं तो सुधा भक्ति एकदम। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं विचार उनको कभी भक्ति होती ही नहीं है, भक्ति वो जानते नहीं कि भक्ति क्या है, बल्कि भक्ति का विरोधी करने लगता है। उन्हीं लोगों को कहते हैं इस मार्ग। तो आज चेतन महाप्रभु जब गए एकदम रथ यात्रा का भाव ही एकदम विपरीत हो गया। महाप्रभु जब गए तो उन्होंने देखा कि ये जो स्थान है ये जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी है क्या, ये है द्वारका, द्वारका मथुरा दोनों करीब करीब एक है, थोड़ा सा अंतर है। ये कृष्ण की ऐश्वर्यमयी भूमि द्वारका है और वहां पर कृष्ण की पांच रानियां और कृष्ण रहेंगे, बलदेव रहेंगे द्वारकाधीश वाले, देवकी नंदन कृष्ण और देवकी नंदन बलदेव, और वहां पर कार्याएं उनके लड़के पड़के जैसे सब रहते हैं द्वारकापुरी में वैसे ही वहां पर। किंतु चैतन्य महाप्रभु अपने भाव नेत्र से उनको प्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं। अब वो द्वारका जाते हैं तो बहुत दिन के बाद उनकी बड़ी इच्छा होती है, बलदेव हमने उद्धव को भेजा, हमने इसके बाद में बलदेव प्रभु जी ने कहा जिससे तुम जाते नहीं हो बड़े तुम निष्ठुर हो, तो तुम जाएगा कि नहीं एक बार बतला दो, मैं तो जरूर जाऊंगा। जो पुत्रया मैया और बाबा नंद बाबा ब्रजवासी बछड़े वहां की गोपियां वहां के गोप सभी लोग विरक्त हमारे तर्थ कर रहे हैं, उनके प्राण भार नहीं हो रहे हैं, सुनते कि बछड़े मरने लग गए हैं, गायें भी मरने लग गई हैं, गोप गोपी लोग भी मरने लग गए हैं आपके पीछे। तो एक बात तो चल तो वो रोने लग गए। सचमुच में मैं बड़ा भारी निश्चित अच्छा आप चलूंगा आपके साथ ही चलूंगा। थोड़ी देर के बाद में वसुदेव और देवी आए, उनके लड़के सामने आ गए, पटराने भी आ गए। सुना जे ये तो जा रहे हैं ब्रज में, तो लोग रोने लगे। जब विलाप करने लगे तो उन्होंने उद्धव को बुलाया, उद्धव जी को बुला करके चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लेकर के बलदेव जी को जैसे मैं रोनी कहने लगी, मैं कह रही थी ये बड़ा सारी नीचे कोई ना कोई चालबाजी बहाना करेगा, ये जाएगा नहीं, ना जाने इसको क्या हो गया, और सब जगह जाएगा किंतु वहां नहीं जाएगा। कृष्ण नहीं आए, बलदेव जी चले आए, श्रीमद भागवत में दर्शन। अब कुछ दिन के बाद ही कृष्ण को अनुताप हुआ, अब रहना नहीं चाहिए। उन्होंने बहाना बनाया कि मैं जा रहा हूं कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में विशाल रूप से समस्त भारतवर्ष के लोग जुटे हुए हैं, वहां पर सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रास चंद्र ग्रहण और वहां की बड़ी महिमा थी, इसलिए वहां पर जा रहे ब्रजवासियों को किसी न किसी भांति से संदेश दे दिया। और ये ब्रजवासी लोग भी तैयार होकर के गाड़ियों में सब सामान लाद दिया और पहरा के लिए कुछ बूढ़ों को और बूढ़ियों को केवल रख दिया, बस जो अधिक नहीं चल सकते हैं, जो कि घर का केवल मात्र पहरा दे सकते हैं, ऐसे लोगों को वहां पर रख दिया। और गाड़ियों पर सामान इसलिए लाद दिया होगा इस पार नहीं उस पार, इस बार तो कृष्ण को लेकर के ही हम आएंगे और यदि नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, गाड़ी पर सब सामान लाद दिया, जहां वो रहेगा वहीं पर हम रहेंगे, किंतु आप ब्रज में नहीं लौटेंगे, ऐसा संकल्प करके वहां पर गए। वहां पर कृष्ण और सब रानियों कुंती से पांडवों से भीष्म पितामह जी से और कुटुंबी इत्यादि सबसे मिलजुल रहे थे। जब इतना
3 महीना रहे
तब पता लगा ये कृष्ण माँ के साथ में यशोदा मैया नंद बाबा और वहां के ब्रजवासी सब सखा इत्यादि सखियां सभी आ रही, बस उनके उनसे मिल रहे तो उनका मिलना छोड़ दिया और सबको छोड़ करके एकदम दौड़ पड़े, बलदेव उनके पीछे दौड़ और वो लोग गाड़ी में गाड़ी से उतर करके जब कृष्ण गए तो कृष्ण एकदम मैया मैया का उनके गोदी में चढ़ गया और रोने लग गए। यशोदा भी विलाप करने लगी और बलदेव जी नंद बाबा के चरणों में खा करके बाबा बाबा करके रोने लगे, बड़ा सरूप दृश्य वहां पर उतर, सब लोग रोने लग गए, सबकी छाती फटने लगी। वही बात जो है वो क्या याद है, गोपियां ब्रह्मा जी को भी संपाद देती हैं, कृष्ण को इतना सुंदर बनाया और आंखों को पलक दे दिया, दो आंख दिया, दोनों आंखों को पलक दे दिया और पलक सब हमें गिरते रहते हैं, यदि हम ब्रह्मा होती तो ब्रह्मा को हम दिखला देती ये कैसे सृष्टि होती है। आज गोपियां कृष्ण को देख करके चिराग अभिष्ट कृष्ण से मिलने की और इधर कृष्ण की भी मिलने की उनकी इच्छा, इसलिए तो ऐसा उन्होंने किया था। यशोदा माँ को एकदम पागल से होकर के रोने लगी, बहुत दिनों के बाद में उनको बेटा मिला, अंचल के नीचे छिपा दिया, आज उनके स्तन में न जाने कहां से दूध आ गया, कितना वर्ष हो गया था, वर्षों हो गए आज पुनः दूध उमड़ पड़ा और कुर्री की भांति रोने लगी, कृष्ण भी रोने लगे, रोहिणी और देवकी देख रही रोनी जी बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी प्रसन्न यशोदा को पाकर पास में बैठ के। और देवकी डर गई कहीं कृष्ण को लेकर के ये सब फिर लौट न जाए, इसलिए उन्होंने यशोदा जी को कहने लगी आप रोइए मत सांत्वना दी। कृष्ण हमारा लड़का होने पर भी बचपन में हमने इसको सौंप दिया था आपको कंस के डर से, किंतु आपने इसको पुतली की भांति पालन किया और बचपन से लेकर के अब ये बड़ा हो गया और आपको भी माता के रूप में जानता है। ये बलदेव भी ऐसे ही आप धन्य हैं जो दूसरे के भी पुत्र को इस प्रकार से पालन कर सकती हैं, अपना बना करके रख सकती हैं, आप ही के लिए संभव दूसरे के लिए। मैंने कृष्ण को सुना रही है जितना तुमको ये प्यार करें ये तुम्हारी मैया है, ये मैया तो मैं हूँ। रोनी ने देखा जैसे इनके प्रेम में ये दादत है देवकी, इसलिए बोली यार कुंती और द्रौपदी सब आकर के आपके लिए बैठी हुई है, आप थोड़ा सा चलिए उनको भी घिरिए। ये उनको यशोदा जी का रोना फिर कम हुआ। उन्होंने देखा कि पार्टी में गोपियां जो हैं विरह में तड़प रही हैं, एक सेकंड की अब देरी होने वाली है तुम मरेगी। कोई एक आदमी है बहुत प्यासा है, 5 मिनट से चल करके आ रहा है और बहुत प्यास उसको लगी है, जितना घर के निकल आ रही है खा रहा है उसका क्या होगा, घर के समीप आकर के कोई थोड़ी देर के लिए रोक रहे तो क्या होगा। एक आदमी बूझा लेकर के चल रहा मुझे अनुभव में एक बार बूझा लेकर के आ रहा था 3 बाइक से किसान का घर में था, लेकर के आ रहा था जितना घर आते गए बूझा भारी होता था, अब उसको घर में ले जाना जब घर जितना आया उतना भारी होने लग गया, जब एकदम दरवाजा आया ना तब घर के भीतर नहीं जा गया बाहर गई उसको पट। ऐसे आज तक वो कृष्ण के लिए प्राण धारण कर रही है जो भी है। कृष्ण को देखा क्या किया उन्होंने, अब प्राण धारण के नहीं कर सकेंगे। यशोदा जी ने देखा कि अभी मुझे पाप न लगे मर न जाएंगे, वहां से तो किसी प्रकार से अब तक तो आई, अब एक सेकंड भी अब बचने वाले। उन गोपियों ने क्या किया, आंखों के माध्यम से कृष्ण को भी कर ले गई और लेकर के क्या एकदम परिरंभण उनको कर दिया और अपने साथ को धीरे धीरे। यशोदा जी ने देखा विलंब करने की जरूरत नहीं है, आपको मरेगी इसलिए बहाना बनाया, बलदेव जी को हाथ पकड़ कर गए, बलदेव थोड़ा सा जाए उनसे बातचीत करें, तो देवी और वसुदेव से बात करेंगे उनको लेकर के और बहाना बना करके निकल गए। वो गोपियों के भाव से जा इतने में गोपियां गोपियों से कृष्ण मिले। कृष्ण कह रहे हैं मैं बहुत अपराधी हूं आपसे, बहुत अपराधी हूं, तुम लोग ऐसा ही समझती हैं, ये प्रसंग आएगा आगे बहुत ही रोचक प्रसंग है, तुम लोगों ने बहुत ही अपराधी मान ली, ठीक है ना? मैं तुम लोग हमको सड़क से त्याग करके और हमारे सेवा के लिए आई और हमसे मिली और हम तुम्हें छोड़ करके सदा के लिए तुम लोग को भी छोड़ करके और यहाँ पर चला ऐसा समझ नहीं हूँ, ऐसा मत नहीं दैव के जल के कारण हम लोग एक जगह मिले और दैव के कारण ही हम लोग थे, इसमें हमारा तुम्हारा कोई भी पक्ष नहीं। प्रेमी और प्रेमी मिलना चाहते हैं किंतु दैवों के कारण ही गोपियों ने सोचा ये तो अपने को ही दैव कहते थे तो दैव ही है न कि दैव और होंगे। अंत में कृष्ण से उन्होंने कहा अब हम दोनों मिली हैं, विश्वेश्वर के राधिका जी ने कहा आप वही कृष्ण है मैं वही मथुरा, आप वही नायक है मैं वही नायिका हूं, किंतु ब्रज में हम लोगों का स्वच्छंद मिला था, यहाँ पर हाथी घोड़े ऐश्वर्य है, यहाँ पर आपकी जाति क्या है जात और शक्ति, वहां पर आपकी ज्वाला जाति थी नंद बाबा के गोप आपके गोप लड़के, अब आपने वो परिचय छोड़ दिया, बंसी और वो मुकुट आपने त्याग कर दिया, वो वृंदावन में ही रह गया, और यहाँ पर उसके बदले में सोने के मुकुट और हाथों में क्या, बंसी के बदले में तीर धनुष या धनुष बाण या खड़ग गदा पद्म, अब आपके चार हाथ निकल आए, दो हाथ और निकल आए, अब यहाँ पर चतुर्भुज कुर्सी हो गए, वहां पर द्वारिया थे और यहाँ पर हो गए द्वारकाधीश, वहां पर तो हम बिना मोल की दासी थी, और यहाँ पर क्या है 16,000 रानियों के आप विराट ऐश्वर्य विराट वैभव, यहाँ पर हम लोगों का वो प्रेम नहीं था, जबकि हम वही हैं, आप भी वही उदाहरण उन्होंने दिया चैतन्य महाप्रभु इस भाव को पढ़ रहे हैं, ये कौन देख रहा है, ये जो बतला रहा है ये कौन देख रहा है, चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं, रथ निकलने वाला है, रथ पर चढ़ाया गया है और उनकी डोरी खींचे जाने को है, उस समय ऐसा तो नाश पानी यहाँ आगामी वही प्राणनाथ को आज हमने पाया, ब्रजेंद्रनंद श्याम सुंदर को पाया, जिसके लिए आज बरसों से मैं सड़क रही थी, मर रही थी और जी रही थी, आज वही प्राणनाथ आज उसमें प्रश्न, ये भावना चैतन्य महाप्रभु की थी और इसी भाव से एकदम समस्त जनसमूह को विभावित कर, मानो वो ब्रज में ले आ रही, कहां से कुछ क्षेत्र मैंने द्वारका, वो मंदिर है द्वारका, और जहां पर ले जाएंगे वो है
वृंदावन,
कृष्ण उनसे बहाना बना रहे हैं, मैं एक दो दिन में लौटाऊंगा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी ना, 15 दिन तक तबीयत खराब हो गई थी, हमारे पेट में बदहजम हो गया और लक्ष्मी ही उनको वो पिला रही है, पाचन गोल मिर्च गुड़ और सौंफ इलायची, मैंने क्या क्या देख करके वो बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और ठाकुर जी को और अन्न ठंड सब बंद रहता है, आकर के उनको खिलाती है, और उसमें भोग इत्यादि ये सब नहीं होता, स्नान करके उनको ऐसा हो जाता है, पेट पतला हो जाता है उनका भी, ऐसे ही लीला करते हैं वो, सब हम मर्वत सब लीला का गुण, अब उसी के लिए जगन्नाथ जी कल जाने वाले हैं, महाप्रभु की भाव में रंग करके अपने भक्तों के साथ हुआ है, आज उन्होंने राजा से कहा कि कल गुंडीचा मंदिर बाद दिन है, एक दिन पहले, और यह सेवा हम लोग खुद करेंगे, पैसे के द्वारा नहीं कराना है, राजा के कर्मचारी नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे, चैतन्य महाप्रभु राजा बड़े प्रसन्न हुए और हजारों भट और मार्जनी उनको दिया, महाप्रभु जी अपने भक्तों को आयु सवेरे दिलाया, सब हजारों भक्त लोग वहां पर जो बंगाल से आए हैं उड़ीसा से आए हैं सब भक्त लोग वहां पर एकत्रित हुए, महाप्रभु जी के साथ में मृदंग थे कितने 14 माधव वो तो दूसरे दिन पहले दिन और दिन माधव माने मृदंग, माधव होता है इससे भी और लंबा थोड़ा कम होता और उसका कप होता है कम कम पेट होता है इतना और बड़ा कप, उसको आजकल ब्रह्मचारी कृष्णदास एक को अपने सिर पर भी नहीं ले जाते और हाथ भी उनको ऐसे नहीं मिले, बड़े बड़े मृदंग और मोटे मोटे होते हैं हार उनका और आवाज भी बड़े गंभीर मेघ गर्जन जैसा, एक साथ बजे ना तो मालूम हो जाए जब मेघ गर्जन कर रहे हैं और उसमें मयूर नृत्य करने लग जाए, भक्त लोग मयूर हैं उस ध्वनि को देख करके सुन करके बस आनंद में विभोर रूप से नृत्य करने लगे, भक्तों का कीर्तन मानो बंसी की आवाज है, सब वहां पर कृष्णमय वृंदावन में हो उठता है, तो वहां पर महाप्रभु जी अपने हाथों से सबको तिलक किया, अपने हाथों से चंदन पहना और अपने हाथों से भक्तों को माला दे करके अपने हाथ अपने भक्तों की पूजा अपने हाथ किया, वो लोग सत्या रहे हैं, सभी महाप्रभु जब दे रहे हैं तो अपना भाग्य समझते कि चैतन्य महाप्रभु आज अपने हाथों से उनको तिलक दे रहे हैं और फिर उनके गले में माला और सबको एक एक झाड़ू दे दिया, किनको प्रधान वालों को, और एक एक घड़ा दे दिया, घड़ा ले लिया इसमें और उधर में झाड़ू ले ली और सब भक्तों का था और मृदंग लेकर के और कीर्तन करते हुए सब लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम और क्या हरि हरे नमः कृष्ण यादव आय नमः यादव आय माधव आय केशव आय सब कृष्ण के नाम है। हम लोग के मंगल आरती के समय में वो विधावरी थे आनंद वर्धन प्रेम निकेतन ये सब क्या चीज है। जब की कोई चिंता करेगा ना पागल बन जाएगा। जिस अंदर में भक्ति है और धर्म है वो इन सब का फूल संयोजक काम आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल संयोजन काम वृंदा वृंदावन निवासी न क्या है जानुना तटचर जानुना तटचर और एक में गोमती नंदन में जानुना जीवन मानस चंद्र प्रभु ये सब गोविंद लीलामृत का भी ऐसे ये कीर्तन यदि भाव पर कोई करे तो वो कृष्ण कहीं दूर नहीं है आ जाएंगे और हृदय एकदम सर्व रहेगा। किंतु योग माया के प्रभाव से ये सब ढका हुआ भाव जो भजन करने व्यक्ति है वही इनका भाव समझ सकते हैं अन्यथा। अब चैतन्य महाप्रभु लेकर के घड़े और कीर्तन करते हुए गए कहाँ जहाँ पर की ठाकुर जी को जाना है गुंडिचा मंदिर अर्थात जाना है वृंदावन में। कल रथ यात्रा के समय में रथ यात्रा कल आरंभ होगी उसमें हम लोग शाम को पाठ करेंगे उसमें ये सब चीजों को और पढ़ाएंगे जो इसमें लिखे हैं। आज हम लोग गुंडिचा मंदिर के संबंध में जो वहाँ पर कैसे किस रूप में हुआ ये थोड़ा सा संक्षेप में पाठ करते हैं। वैसे तो मैंने बतला ही दिया है संन्यास लेकर के पुरी में आए प्रताप रुद्र राजा को विषयी समझ कर के उनको दर्शन नहीं दे। प्रताप रुद्र राजा ने भी प्रतिज्ञा की है इन्होंने प्रतिज्ञा की है मैं सब जगत पर कृपा करूंगा केवल प्रताप रुद्र पर ही नहीं कृपा करूंगा तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ मैं आज जो भी बनूंगा और कानी मुद्रा लेकर मुद्रा मैंने वो कुंडल एक तरफ में वो ले सके और आज जो भी भिखारी बन जाऊंगा सब कुछ राजपाट छोड़ दूंगा जब महाप्रभु की कृपा नहीं तो इस प्राण से भी हमें कोई जरूरत नहीं है आज भी मैं प्रत्याग कर ऐसा कह करके जब कहा महाप्रभु जी बड़े संतुष्ट हुए उन्होंने कहा जैसे इसको सांत्वना दे दो तो उनके साथ हम भट्टाचार्य थे इत्यादि के द्वारा रामानंद के द्वारा उनको सांत्वना कैसे सांत्वना दी उसके लड़के को
मैंने कोई बात
दिया वो लड़का 5 वर्ष 6 वर्ष का लड़का और श्याम वर्ण का लड़का या कि तो था
बड़े बड़े
और धूम का तो सुंदर राजा का लड़का नहीं और उसकी कांति निकल गई थी
आंखें
और आंखें बड़ी बड़ी बड़ा ही सुंदर राजा का लड़का और उसको पीला कपड़ा पहना दिया रामानंद जी और उसको मोर पंख यहाँ लगा दिया और पीतांबर उसको और उसको लेकर के गए महाप्रभु जी के पास में लेकर के बाजे तुम उनको प्रणाम प्रणाम करते महाप्रभु जी को कृष्ण कृष्ण कहने लगे और इस बच्चे को आलिंग और रामानंद के कहने से अपना वो जो कपड़ा था उत्तरी उसको थोड़ा सा फाड़ कर और उस बच्चे को प्रसाद को स्नेह किया। इसके बाद में ले गए राजा जी समझे कि जैसे महाप्रभु जी उनको आलिंगन किया उसको आलिंग करते ही इनको आलिंगन का भी भाव संक्रमित हो गया इनमें। जैसे वो कल एक लीला दिखलाए हैं
जगाई
मधाई ने मारा, जगाई ने महाप्रभु के लिए नित्यानंद प्रभु के लिए कुछ शरत था। उन्होंने कहा जा रहे नित्यानंद प्रभु ने, अरे जगाई ने तो मेरी रक्षा की, नहीं तो मधाई तो मुझको फिर मारने आया रहा था। तो उन्होंने कहा जो रक्षा की आपको रखी, महाप्रभु जी ने उसको आलिंगन किया, किसको जगाई को, और कहा तुमको कितने प्रेम हो, वो तो एकदम मस्त होकर के रोने लग गया। अब ये जगाई से मधाई से कहता है अरे तुम भी जल्दी उनके शरणागत, तो वो कहा नहीं है तो उसको पकड़ लिया, जैसे पकड़ा तभी उसको रुमान चावल दिया, क्यों
संक्रमण हो गया,
उसमें जो प्रेम आया था उसका प्रेम का भाव उसमें आया और छूटे ही एकदम उसके हृदय में प्रेम आया और गण में आया साथ ही साथ में। फिर महाप्रभु के कहने से मां नित्यानंद प्रभु के चरण में क्षमा मांग करके और फिर महाप्रभु को ऐसा ही होगा। भक्तों के संपर्क से भक्ति किसी के हृदय में संक्रमित होती है, इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करना चाहिए। अपने साधन बनने से भाई लाभ करो नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु जी दल दल को लेकर के वहां पर गए और वहां पर क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं साधक को भजन करने के समय में। पहले ही स्थिति में अपने भीतर के अनर्थों को अपराधों को काम को लोभ मद मोह मात्सर्य को दूर कर देना, किसी के प्रति भी अब शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, किसी से भय नहीं अब होना चाहिए, निर्भय क्यों निर्भय क्यों निर्भय रहेगा
भगवान
का। अरे जब हमने शरणागत प्रभु का हो गया, मैं शरणागति हो गई, तो कोई आकर के क्या कर लेगा, अब कर लेगा प्रभु की इच्छा से जो होगा तुझे, इसलिए निर्भय, इसलिए समस्त भक्तों को निर्भय होना चाहिए। जब भी निर्भयता नहीं आई तो भगवान का भजन है, क्योंकि चित्त चंचल हो जाता है, इसलिए चित्त को कभी चंचल मत करो। जब भी प्राण भी कटने को आए, जैसे कि अम्बरीश महाराज का हुआ, बस ऐसे खड़े रहो संकल्प, ऐसे ही प्रहलाद महाराज को जैसे की पत्नी आई तो कैसे खड़े रहे, प्रार्थना भी नहीं की, जैसे प्रभु हमारी रक्षा करें, केवल कहने के लिए और सुनने के लिए नहीं अपने जीवन में आचरण कर। सब भक्तों के संबंध में ऐसा देखते निराबाई निर्भय होकर के थे, बीज का प्याला दे दिया तो वो पी लिया, उसके लिए चरणामृत बन गया, सांप लिया तो सांप पी लिया। इतना गुरु वैष्णव के प्रति विश्वास रखो, जो काटे हैं उनका नौकर बनकर के गुलाम बनकर के, जबकि गुलामी ही करनी है तो किसका करेंगे, वैष्णव का करेंगे, गुरु वैष्णव का, कोई भी प्रतिवाद नहीं। मुरारी गुप्त को आज बतला रहा था, कुछ अच्छी बातें भी बतलाते हैं, बतला रहा था महाप्रभु जी ने कहा ओम कृष्ण का भजन करो, रामचंद्र जी का भजन करो, उन्होंने ननु नत्यु कुछ भी नहीं कहा, कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, अच्छा प्रभु आप जाता, यदि समझो कि ये गुरु हैं, इनमें वैष्णवत्व है गुरुत्व है, तो क्या करो जो कहते हैं बिना किसी प्रतिवाद के, गुरु का ज्ञानी अभिचार, केवल ये श्रीमद् भागवत में और शास्त्र में शिक्षा के लिए नहीं, जो अपने जीवन में आचरण करेगा उसका ये फल पाएगा। तो मुरारी गुप्त ने कहा अच्छा गए और कृष्ण की आराधना की सोचने कर, किंतु ध्यान में क्या रहा है, सेवक छोड़ देगा किंतु सेवक नहीं छोड़ने वाले हैं ना, वो नहीं छोड़ेंगे, हमारा सेवक चला जाए, उसके लिए क्या क्या करते हैं हम देखते हैं बृहद भगवतामृत में, गोप कुमार के उपाख्यान में प्रभु क्या क्या नहीं करते हैं उसके लिए, बहाना कपटता झूठ सब कुछ करते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले अनर्थों को दूर करना है, महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ ले गए, कल जगन्नाथ जी आने वाले हैं, इसलिए हमारे हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ हैं अपराध हैं कुटिलता है सबको निकालना, क्या क्या है ये हम और ये बतलाएंगे। मेरा कविता मार्जन प्रथमे मार्गनी लिया बड़ी लाश होता मार्गनी लिया मैंने नारियल का झाड़ू और हजारों भक्त लोग एक तरफ से बैठ करके बड़े बड़े जो पत्थर कंकर और बड़े बड़े सिंह इत्यादि थे पहले दूर भक्त में फिर दूसरी बार बैठे अब तो देखो देखो तीसरी बार बैठे अब धूल तक भी और कभी आगे देखें कौन अधिक झाड़ू देता है और अधिक संग्रह कौन करता है मैं तो समझेगी इसने परिश्रम किया गुरु देखेंगे ना कभी परीक्षा भी ले लेंगे जो गुरु खुद ही भजन नहीं करेगा वो परीक्षा नहीं लेगा जो गुरु भजनशील हैं वो भक्तों की कभी 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 साधकों की और शिष्यों की परीक्षा भी ले सकते जैसे कृष्ण और बलदेव कृष्ण और सुदामा इत्यादि का या इसने पहले हम लोग देखे हैं महाप्रभु की कभी कभी परीक्षा ले लेते हैं तो परीक्षा लेते हैं कैसे लेते हैं देखते हैं कि इसमें क्रोध है कि नहीं वैष्णव का आधिपत्य है कि नहीं देखते हैं कितने पानी में है सुजोग देते हैं और उसका कोई सुजोग ना ले तो वो दुर्भागा भजन नहीं करेगा तो किसका बिगड़ेगा हमारे बाप का बिगड़ेगा न भी गुरु के बाप का बिगड़ेगा ना उसके बाप का बिगड़ेगा उन्हीं के बाप का बिगड़ेगा इसलिए इन सब चीजों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए भरपूर रूप में यही महाप्रभु जी के मृतिका मंदिर मार्जन का ये सार अंश है जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कृष्ण के नाम में रुचि नहीं होगी भक्तों की सेवा में रुचि नहीं होगी गुरु की सेवा में नहीं रुचि होगी और ये तो साधन है जब साधन में नहीं हुआ तो साधन में क्या होगा हजार लाख चुकाए करो कोटि कोटि जन चले जाएंगे यही सब पद्धति है पहले अनर्थों को दूर किया जाए बड़े बड़े अनर्थ तो क्या अपराध